एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम रोजाना रेडियो पर, टीवी पर, कंप्यूटर पर और न जाने कहां कहां जाने कितने ही गीत सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। ये फिल्मी नगमे हमारे साथी हैं सुख दुख के, त्योहारों के, शादी और अन्य अवसरों के, जो हमारी जिंदगियों से कुछ ऐसे जुड़े हैं कि इनके बिना हमारी जिंदगी बड़ी ही सूनी और बेरंग होती। पर ऐसे कितने गीत होंगे जिनके बनने की कहानियों से, उनसे जुड़े दिलचस्प किस्सों से आप अवगत होंगे? बहुत कम है ना। तो ऐसे ही कुछ किस्से लेकर हम आते हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक कार्यक्रम एक गीत 100 अफसाने में। तो श्रोताओं, आज की कड़ी के लिए हम जो गीत लेकर आए हैं वो दरअसल कोई फिल्मी गीत नहीं, बल्कि एक मशहूर गैर फिल्मी नज्म है जिसे आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, सुदर्शन फाकिर का कलाम, आवाज़ जगजीत सिंह की। हाँ जी हाँ, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, इतनी बार सुनी हुई ये नज्म। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नज्म के पीछे सुदर्शन फाकिर का कैसा दर्द छुपा हुआ है? किन दहशत भरे लम्हों को झेलने के बाद ऐसी रचना उनके कलम से निकली होगी? आज हम इसी का जिक्र करेंगे और साथ में बचपन की बातें गायक जगजीत सिंह की भी, जिन्होंने इस नज्म को गाया। कैसे उनका नाम जगमोहन सिंह से बदलकर जगजीत सिंह हो गया? फिल्म संगीत जगत में गीतकार संगीतकारों की ऐसी बहुत सी मशहूर जोड़ियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, पर गज़लों की दुनिया में अगर शायर और गायक मौसिकार की जोड़ियों की बात चलेगी तो सुदर्शन फाकिर और जगजीत सिंह का नाम इज्जत से लिया जाएगा। आज के इस अंक के लिए शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं ऋतु कौशिक।
बचपन एक ऐसा समय है जिसकी अहमियत उसके गुजर जाने के बाद ही समझ आती है। बचपन में ऐसा लगता है कि जाने कब पढ़े होंगे, कब इस पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिलेगा। पर बड़े होने पर यह एहसास होता है कि टूटे दिल से कहीं बेहतर हुआ करते थे टूटे घुटने। इस तनाव भरी जिंदगी से कई गुना अच्छा था वो बेफिक्री का जमाना। पर अब पछताने से क्या फायदा, गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता। बस यादें शेष हैं उस हसीन जिंदगी की, उन बेहतरीन लम्हों की। बस एक फरियाद ही कर सकते हैं ऊपर वाले से कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और यही इल्तिजा शायर सुदर्शन फाकिर ने भी की थी अपनी इस मशहूर नज्म में। उर्दू में फाकिर शब्द का अर्थ है फिक्र करने वाला। दक्कनी उर्दू में फाकिर को फाकिर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है फक्र करने वाला। चाहे उनका नाम जो भी हो, सच यही है कि उन्हें जमाने की फिक्र है और जमाने को उन पर फक्र है। मोहब्बत और दर्द को गले लगाने वाला ये शायर हम सबसे बहुत जुदा है, लेकिन जब उन्हें अपना वतन, अपना बीता बचपन और गुजरा हुआ वो जमाना याद आता है तो यकीन मानिए वो बिल्कुल हमारी तरह हो जाते हैं। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने घर लेके आ गया, कहा था सुदर्शन फाकिर ने। जिंदगी की सहर यानी जीवन की शुरुआत होती है वहां से जहां पर आत्मा शरीर का लिबास धारण कर लेती है, और सुदर्शन फाकिर के लिए ये काम हुआ था फिरोजपुर के एक छोटे से गांव रेतपुर में, जो आज भारत पाकिस्तान की सरहद पर स्थित सेना की एक छावनी है। उनका जन्म 1934 में हुआ था। अपने छोटे से गांव में हंसते खेलते उनका बचपन बीत रहा था। वो 13 वर्ष की आयु तक ही पहुंचे थे कि देश के बंटवारे की दहशत ने उन सीमावर्ती इलाकों को अपनी जकड़ में ले लिया। दुर्भाग्यवश सुदर्शन फाकिर के गांव रेतपुर के सीने से होती हुई सरहद खींच दी गई और पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। दोनों तरफ लाशें गिरी, लूटमार हुई और बचपन के वो सुनहरे दिन न जाने यकायक कहाँ खो गए। वो सुंदर शांत गांव सेना की छावनी बनकर रह गए। इस बात का, इस सदमे का सुदर्शन फाकिर के दिल पर जो असर हुआ था, उसे उन्होंने बरसों बाद अपने बचपन के नाम इस नज्म में किया। दौलत, शोहरत, यहाँ तक कि जवानी के भी बदले अगर कोई उनका वो खोया हुआ बचपन वापस कर दे तो अच्छा है। ये उस जमीन का कमाल कह लीजिए या नसीब का, जिसने सुदर्शन फाकिर को बनाया एक अजीम शायर। फिरोजपुर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद वो जलंधर आकर रेडियो से जुड़ गए। रेतपुर का नाम कैसे रेतपुर पड़ा होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन रेत के टीलों का जिक्र फाकिर ने इस नज्म में जरूर किया है, जब वो कहते हैं, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। बहुत आम बातें ये सब जो हम सभी ने अपने अपने बचपन में महसूस की होंगी, पर इतनी मासूमियत और सीधे सरल शब्दों में किसी नज्म में पिरोना हर किसी के बस की बात नहीं। एक अच्छे शायर या गीतकार की यही निशानी होती है। उधर जगजीत सिंह के बचपन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में अमर सिंह धीमान और बचन कौर के घर हुआ। धर्म से सिख और मूलतः पंजाब के रहने वाले अमर सिंह धीमान एक सरकारी कर्मचारी थे। चार बहनों और तीन भाइयों वाले परिवार में जगजीत को घर में जीत कहकर बुलाते थे। जगजीत को पढ़ाई के लिए श्री गंगानगर के खालसा हाई स्कूल में भेजा गया और मैट्रिक के बाद वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने आर्ट्स में बीए किया जलंधर के डीएवी कॉलेज से और उसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया। इस तरह से जगजीत सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको पता है जगजीत का नाम शुरू में जगमोहन सिंह रखा गया था। फिर एक दिन वो अपनी बहन से मिलने चूरू जिले के सहवा में गए थे, जहां नामधारी संप्रदाय के एक संत ने उनके गाए श्लोकों को सुनकर उनके बहनोई रतन सिंह को ये सुझाव दिया कि इस लड़के का नाम जगजीत कर दिया जाए, क्योंकि इसमें क्षमता है अपनी सुनहरी आवाज से पूरे जग को जीतने की। बस फिर क्या था, जगमोहन सिंह बन गए जगजीत सिंह और उन्होंने वाकई इस नाम का मान रखा और उस संत की भविष्यवाणी सच हुई। जगजीत सिंह के पिता ने उन्हें संगीत की एबीसीडी सीखने के लिए श्रीगंगानगर के स्थानीय संगीतज्ञ श्री छगन लाल शर्मा के पास भेजा। वो जगजीत के स्कूल के दिनों का जमाना था। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक हुआ करता था। इस तरह से स्कूल से घर वापस आकर दोपहर में खाना खाने के बाद मास्टर जी के घर चले जाया करते थे। जगजीत सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया कि छगन लाल जी दृष्टिहीन होने के बावजूद एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, जिन्होंने सारेगामा से शुरू करते हुए संगीत की प्राथमिक शिक्षा उन्हें दी। 2 साल बाद जगजीत के पिता ने उन्हें उस्ताद जमाल खान के पास भेजा, जिनसे उन्होंने राग, ख्याल और तराना सीखा। खान साहब तानसेन के वंशज थे। बंदिशें, खासकर मालकौंस और बिलास खानी तोड़ी की बंदिशें खान साहब ने ही जगजीत सिंह को सिखाई थी। उसी साक्षात्कार में जब जगजीत सिंह से उनकी पसंदीदा गजलों के बारे में पूछा गया तो जिन जिनका नाम उन्होंने लिया उनमें पहला नाम इसी नज्म ये दौलत फिलेलो का था। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, होठों से छू लो तुम जैसी गजलों का उन्होंने नाम लिया था। इस तरह से यह नज्म केवल हमारे और आपके लिए ही नहीं, बल्कि इसके अजीम फनकार की भी खास पसंद रही। जिस तरह से फिल्मों में शकील, नौशाद शैलेंद्र शंकर जयकिशन, गुलजार पंचम जैसी गीतकार संगीतकार जोड़ियां बनी हैं, उसी तरह से गजलों की दुनिया में शायर सुदर्शन फाकिर और गायक संगीतकार जगजीत सिंह की जोड़ी भी खूब जमी। फाकिर की तमाम रचनाओं में ये नज्म जगजीत सिंह का फेवरेट नज्म है, ये उन्होंने अपने कई साक्षात्कारों में कहा। आज ना सुदर्शन फाकिर इस दुनिया में है और ना ही जगजीत सिंह, पर बचपन को याद करने का जो तरीका दोनों हमें सिखा गए हैं इस नज्म के जरिए, जब तक बचपन रहेगा, जब तक जवानी रहेगी, जब तक बुढ़ापा रहेगा, हर पड़ाव के लोग इस नज्म को दिल से महसूस करेंगे, इस नज्म को सुनते हुए अपने बचपन को बार बार जीते रहेंगे। आज बस इतना ही। आज के इस अंक का आलेख तैयार किया सुजॉय चटर्जी ने, इस स्तंभ के संचालक संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी ऋतु कौशिक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
एक गीत सौ सने।